जो होना था हो गया, अब उसके बारे में बात करके दुखी या परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सिमरन और आन्या ने उसे देखा, फिर मुंह बनाते हुए एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। दोनों हाथ थामे उसके पीछे पीछे चल दी। रूम में कदम रखते ही अन्वय ने वहां का नजारा देखा। उसकी आंखों के सामने सारा दृश्य घूम गया। आखिर वहां हुआ क्या था? उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। तभी आन्या की मीठी सी खनकती आवाज उसके कानों में पड़ी। सॉरी, मेरे वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। आवाज सुनकर अन्वय अपने ख्यालों से बाहर आया और आगे बढ़ते हुए बोला, इट्स ओके। इतना कहकर वो सब चीजों को उठाकर उनकी सही जगह पर जमाने लगा। आन्या सिमरन के साथ किचन समेटने लगी। कुछ देर बाद घर वापस सेट हो चुका था। टूटी चीजें फेंकी जा चुकी थीं। आन्या और सिमरन ने लंच बनाया, फिर तीनों ने साथ में लंच किया। आन्या की निगाहें अन्वय के चेहरे पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद सिमरन चली गई और अब वहां सिर्फ अन्वय और आन्या ही थे। आन्या ने अन्वय को देखते हुए सवाल किया, अन्वय, तुम वही जंगल वाली वैम्पायर हो ना? मैंने उसकी आंखें देखी थीं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। अन्वय उसकी बात का मतलब समझते हुए भी उसके सामने अनजान बन रहा था। उसका जवाब सुनकर आन्या कुछ मायूस होते हुए बोली, तुम्हें याद नहीं, ट्रेन में मिलने से पहले जंगल में तुम मेरे सामने आए थे, मुझे बचाया भी था, और तुम्हें देखकर जब मैं बेहोश हो गई थी तो तुमने मुझे मेरे घर भी छोड़ा था। कहानी अच्छी बना लेती हो, एक काम करो, राइटर बन जाओ, खूब नाम कमाओगी, अन्वय ने तंज कसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आन्या का मुंह बन गया और वो तुनकते हुए बोली, मैं कोई कहानी नहीं बना रही, मुझे अच्छे से याद है कि तुम ही थे वहां। पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, और मेरे हिसाब से तो तुम भी जरूर किसी सपने को सच मान रही हो। तुम्हारे सामने मैं अपने रूप में आज पहली बार आया था, अन्वय ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए साफ छूट कहा, जिसे सुनकर आन्या का मुंह एकदम से उतर गया। उसने उदास होकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अपना सामान पैक कर लो तुम, अन्वय ने वहां से उठते हुए कहा। तो आन्या ने एकाएक उसकी बाहों को पकड़ते हुए उसको रोक कर कहा, अब भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? वो मुझे वापस अपने साथ ले जाएगा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। अब आन्या सच में बहुत उदास लग रही थी। अन्वय ने उसकी तरफ मुड़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों कहीं और जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? आन्या ने सर उठाकर आस भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय कुछ पल उसको देखता रह गया, फिर आगे पीछे हटाते हुए बोला, अब मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं, इसलिए तुम अकेली यहाँ से जा रही हो। चिंता मत करो, जिस जगह तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? मुझे और किसी पर भरोसा नहीं, मुझे बस तुम ही चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। समझने की कोशिश करो आन्या, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मेरे अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, तुम मेरी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा फर्ज था, और मैं उसे पूरा करके यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। और मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए ना आज कोई जगह है और ना ही कभी हो सकती है। आज जो जंगल में हुआ उसके बाद वैसे भी मुझे वापस लौटना ही होगा, इसलिए अब तुम्हारा कहीं और सेफ जगह जाना बहुत जरूरी है। बात समझो मेरी और अपना सामान पैक कर लो। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगा तो आन्या ने पीछे से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, यहीं रहूंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। अन्वय ने कोई जवाब नहीं दिया और विश्वास को कॉल लगा दिया। विश्वास किसी काम से मुंबई गया हुआ था, कोई केस था जिसकी छानबीन के लिए उसे वहां जाना पड़ा था। जब अचानक ही उसका फोन बजा तब वो केस की फाइल ही पढ़ रहा था। अन्वय का नाम देखकर उसके लबों पर मुस्कान ठहर गई। उसने कॉल पिक करते हुए मुस्कुराकर कहा, कहिए बरखुरदार, आज हमें कैसे याद कर लिया? मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। दूसरे तरफ से अन्वय की गंभीर आवाज सुनकर विश्वास ने भी गंभीर होते हुए कहा, क्या हुआ है यार, बड़ा सीरियस लग रहा है। अन्वय ने आज की सारी बात उसे बता दी, फिर आगे बोला, आन्या का यहाँ रहना अब ठीक नहीं, और आज मैंने जो किया उसके बाद मेरे साथ रहना तो खतरे से भरा हुआ है। हो ना हो, वो विक्रांत के कुंबे के सदस्य थे, और मेरे उन्हें मारने के बाद वो शांत नहीं बैठेगा। काउंसिल से ऑर्डर आता ही होगा मेरे लिए, और अब मुझे अपने महल में लौटना होगा। पर उससे पहले मैं आन्या को किसी सेफ जगह भेजना चाहता हूँ, और तेरे पास वो सुरक्षित रहेगी, ये मेरा विश्वास है। वैसे भी तुझे घर में एक केयर टेकर की जरूरत थी, तो तू आन्या को अपने पास रख ले, ताकि मैं उसकी तरफ से बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकूँ। ठीक है, फिलहाल तो मैं मुंबई में हूँ, कल लौटते ही मिलता हूँ तुमसे। पर एक बात बता, आन्या इतनी सुंदर है और तू उसे मेरे घर में मेरे साथ रखना चाहता है, ये जानते हुए कि तू उससे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है, उसे मेरे पास भेजने का रिस्क क्यों ले रहा है? विश्वास ने शांति से सवाल किया, जिसका मतलब अन्वय नहीं समझ सका और उसकी बातों में उलझते हुए कहा, तू कहना क्या चाहता है? मैं कुछ समझा नहीं। तू आनिया को मेरे साथ रखना चाहता है? वो इतनी खूबसूरत है, अगर मेरा दिल उस पर आ गया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। विश्वास अब काफी गंभीर लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अन्वय के लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने बेफिक्री से जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू अपने यार की मोहब्बत को कभी उस नजर से नहीं देख सकता। इतना विश्वास है मुझ पर? हाँ है, फिर भी दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। अगर मेरा दिल आनिया पर आ गया तो जैसे मैं उससे दीवानों की तरह मोहब्बत होने के बाद भी उसके तरफ से मुंह फेरे हुए हूँ, वैसे ही तू भी इस दर्द में मेरा साथी बन जाएगा। अन्वय ने बिना किसी भाव के जवाब किया, जिस पर विश्वास झट से बोला, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। जिससे भी मुझे मोहब्बत होगी मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, तेरे मेरे तरह इतने दुश्मन नहीं है जो तेरी एक कमजोरी की तलाश में घूम रहे हो, तो तू ये कह सकता है। पर मैं अपने वजह से आनिया की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। कल यहाँ पहुंचे तो घर आ जाइयो मेरे, अन्वय ने गंभीरता से कहा, फिर बाय बोलकर फोन काट दिया।